नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और ब्राजील अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अगले महीने की 31 तारीख तक देश के माओवादी खत्म कर दिए जाएंगे। श्री शाह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर की शांति बहाली से सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना की। गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का 5वां संस्करण गोवा में शुरू। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती समुद्री चुनौतियों पर हुई चर्चा। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अस्थायी तौर पर कम करने और 10% करने की घोषणा की। और कोलंबो में आईसीसी T20 विश्व कप के चरण 8 में आज शाम न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और ब्राजील ने आज नई दिल्ली में डिजिटल साझेदारी, दुर्लभ खनिज तथा महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग, लघु और मध्यम उद्यम MSME और तटीय क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इन नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों के सहयोग, सुधारवादी बहुपक्षीयवाद, वैश्विक शासन और वैश्विक दक्षिण से संबंधित मुद्दों सहित पारस्परिक हित के क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति लुला ने नेतृत्व में भारत और ब्राजील संबंध मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने ब्राजील को लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार बताते हुए कहा है कि अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की है कि भारत और ब्राजील में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ धातुओं पर समझौता सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद और उसके समर्थन की पूरी मानवता के लिए दुश्मन है। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देश वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार करने पर भी सहमत हुए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा का औपचारिक स्वागत किया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि महात्मा गांधी के मूल्यों और आदर्श भारत ब्राजील साझेदारी को प्रेरित करते रहेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने वैश्विक वक्तव्य किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री सिल्वा की मुलाकात से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 68वें स्थापना दिवस परेड समारोह में कहा है कि देश ने अगले महीने की 31 तारीख तक माओवादी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। श्री शाह ने कहा है कि CRPF ने देश की अतुलनीय सेवा की है। उन्होंने कहा कि CRPF के जवान कारोबार बटालियन कोपरा बटालियन देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जम्मू कश्मीर और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शामिल बहाल करने के लिए CRPF की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। गृहमंत्री ने कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा CRPF के कारण ही संभव हुए है। श्री शाह ने कहा है कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए CRPF की कई बटालियन तैनात की गई है। उन्होंने देश की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले CRPF के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने बाद में गुवाहाटी के निकटवर्ती क्षेत्र कचुटोली में 10वीं असम पुलिस बटालियन के नए परिसर की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR अब व्यवसायिक रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र प्रगति का केंद्र बिंदु बन गया है। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय CSR शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने यह बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में हंगरी की राष्ट्रसभा में उपाध्यक्ष डॉ लाजोस ओला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने बताया है कि बैठक में संसदीय सहयोग को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा हुई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आज अंतिम दिन है। प्रदर्शकों, नव प्रवर्तकों और आगंतुकों की उत्साहजनक प्रतियोगिता और भागीदारी को देखते हुए सरकार ने एक्सपो को एक दिन और बढ़ा दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक्सपो शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। निरुथी क्लाइमेट और इकोसिस्टम पावर प्वाइंट लिमिटेड के मुख्य मानव संसाधन और रणनीति अधिकारी राज पटनायक ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि इंडिया एआई समिट सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इक्वे के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहसिन मैनन ने इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट को नवप्रवर्तकों और हितधारकों से जुड़ने का एक शानदार मंच बताया है। आईजीओटी कंपनियों के प्रबंधक विनायक ने बताया है कि यह प्लेटफॉर्म एआई और उभरती प्रौद्योगिकी के सहयोग से एकीकृत प्रशिक्षण के माध्यम से सिविल सेवकों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें एआई द्वारा तैयार भविष्यवाणी प्रतिकूल भी शामिल किए गए हैं। मेरठ के छात्र वरिष्ठ ने कहा है कि उत्साह दिखाते हुए कहा कि इस आयोजन ने उनके जैसे छात्रों को एआई के लिए नई तकनीकों को जानने का अवसर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने कई तकनीकी संसाधन प्रस्तुत किए हैं। श्री वैष्णव ने आज सुबह समिट का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि युवाओं में एआई समिट को लेकर बहुत उत्साह है। उन्होंने समिट स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कल हंगामा करने को कहा और लोगों से इसे बेहद शर्मनाक बताया है। भारतीय जनता पार्टी में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में आयोजन स्थल पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस से इस कृत्य को पूरा देश आहत और विचलित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने आज नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। पार्टी ने यह विरोध प्रदर्शन कल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे के विरोध में किया। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत के संविधान को असली ताकत तब मिलती है जब वो लोगों और उनकी अपनी भाषाओं तक पहुंच सकता है। नई दिल्ली के उपराष्ट्रपति भवन में गुजराती और तमिल भाषाओं में संविधान के विमोचन और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कानूनी शब्दावली के 8वें संस्करण के विमोचन के बाद अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने इस पहल को विभिन्न भाषाई समुदायों की संवैधानिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। नौसेना ने गोवा समुद्री सम्मेलन का 5वां संस्करण आज गोवा में वेरेम में नौसेना युद्ध महाविद्यालय में शुरू हुआ है और सम्मेलन का विषय है हिंद महासागर क्षेत्र उभरती समुद्री चुनौतियों का समाधान, गतिशील खतरों को कम करने के लिए प्रगतिशील प्रयास। सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक तंत्र और साझेदारी को मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बलों की 480 कंपनियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। यह तैनाती 2 चरण में होगी। 1 मार्च को बलों की 440 कंपनियों का पहला जत्था राज्य में पहुंचेगा। बाद में 10 मार्च को शेष बलों की तैनाती की जाएगी। अमरीका में व्हाइट हाउस में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए वैश्विक टैरिफ की घोषणा के बाद भारत को अस्थायी रूप से 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यह नया टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम IEEPA के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों का स्थान लेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि भारत पर पहले लगाए गए 18% टैरिफ का इस पर क्या असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस के बयान में यह स्पष्ट होता है कि धारा 122 के अंतर्गत भारत पर टैरिफ अस्थायी तौर पर घटकर 10% हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ब्राजील अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक बढ़ाने पर सहमत। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अगले महीने की 31 तारीख तक देश से माओवादी खत्म कर दिए जाएंगे। गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का 5वां संस्करण गोवा में शुरू। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ अस्थायी तौर पर कम करके 10% करने की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।